نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدنی دور میں سے ہم غزوہ احد کے حالات دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کمی کو بہترین مینجمنٹ کے ساتھ کمپنسیٹ کیا، اس کی کمی کو پورا کیا. اور ایک اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف ہر وقت اسباب پہ نظر نہیں رکھتا اور یہ شکوے نہیں کرتا کہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کام کیسے کریں، یہ ہوگا تو کریں گے، بلکہ جو ہوتا ہے اس کا بہترین استعمال کرتا ہے. آپ نے اپنی بہترین طریقے سے کوششیں کی. اب اس کے بعد جب ساز و سامان، اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں، تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کے اندر جوش جذبہ اور ان کے اندر ایک روح پھونکنے والی کیفیت ہوتی ہے. اور ایک اچھا لیڈر یہ کام بہت اچھا کرتا ہے. جو یہ کام نہ کرے وہ لیڈر نہیں ہے. موٹیویٹ کرنا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں ہر دل مؤمنین علی القتال، کہ نبی لوگوں کو قتال پہ مائل کیجئے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ کوئی کام کریں اس میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا کہے اور اس طرح جذبات میں آ کے کام کرنا، اس میں اور بات ہے. گھر میں صفائی ہو رہی ہو تو اگر اچھی ماں ہو یا باپ تو بچوں کو جوش دلا، چلو جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام جو آدھے گھنٹے میں ہونا تھا وہ بعض دفعہ 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک عمل کی بات یہ نکلتی ہے کہ ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے. آپ نے اوپر نیچے دو زرہیں پہن رکھی تھی. اس سے بھی عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ اسباب پورے اختیار کیجئے. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا سب کچھ بس اللہ پہ ڈالنے کا نام لے کر کام کرنا چھوڑ دیں. پھر آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی رغبت دی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو خوب ثابت قدمی سے لڑنا، ہمت دکھانا، اور آپ ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے بالکل آپ نے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر دے. اس پر کئی صحابہ لپک پڑے، جن میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمر بھی تھے، لیکن آپ نے ابو دجانہ کو وہ تلوار دی. اور جیسا کہ ہم پیچھے بات کر چکے کہ انہوں نے پھر اس کا حق کیسے ادا کیا کہ مرتے دم تک یہ تلوار ان کے پاس رہی، اور بہت مان کیا کرتے تھے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے یہ چیز مجھے دی. تھوڑا سا حال دیکھتے ہیں مکی لشکر کا، ادھر کیا ہو رہا ہے. ادھر تو الحمدللہ اللہ کی مدد بھی ہے، تیاریاں بھی ہیں، اور تھوڑے اسباب کے باوجود حوصلے بہت بلند تھے. مشرقین کے پاس سب کچھ تھا. صف بندی کے اصول پر انہوں نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دی، خوب اچھا منظم کیا. ان کی طرف سے لیڈر ابو سفیان تھے جو بالکل لشکر کے درمیان میں اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے. یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ لیڈر کی جگہ ہمیشہ ایسی ہوتی تھی کہ جس میں وہ سب کو دیکھ سکے. اور ایک اچھا لیڈر اپروچیبل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت الگ کہیں بند کمروں میں بیٹھا ہو اور کوئی اس تک اپروچ نہ کر سکے اور چار دروازوں سے گزر کر اجازت لے کے اس کے پاس جانا چاہے. یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. جب لوگوں تک آپ نہیں ہوتے تو یاد رکھیے کہ پھر لوگوں کے باتیں بھی آپ تک نہیں پہنچتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں گورنروں کے لیے جو قوانین بنائے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کے گھروں کے آگے برآمدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی امیر ہو کے غریب آپ اس کی مدد کر سکیں. بہرحال مکی لشکر میں دائیں جانب حضرت خالد بن ولید تھے، ابھی تک اسلام ان کو نہیں ملا تھا. بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل تھے، اور آپ دیکھیے کہ یہ دونوں کل مسلمانوں کو ملنے والے تھے. اس لیے اس جنگ میں اور کیا حالات بگڑے، لیکن ان دونوں کو اللہ نے بچایا. اور خالد بن ولید تو بیچ میں مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل تو بالکل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. اس سے بھی عمل کی بات ہے کہ کچھ دالیں دیر سے گلتی ہیں، انتظار کرنا چاہیے. ہر بندے کے اوپر ایک ہی قانون نہیں چل سکتا. آپ بات کہتے رہیں، اپنے رویے سے اسلام کی خوبصورتی دکھاتے رہیں، اللہ جب چاہے گا دلوں میں لوگوں کے ڈالے گا اور وہ آئیں گے. کبھی بھی ججمنٹل نہ ہو اور ہمت نہ چھوڑیں. اسی طرح دشمنوں نے پیدل فوج ایک مقرر کی تو اس کی کمان صفوان بن امیہ کو دی. تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے. جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا. یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب، یعنی جو ان کے جو منصب ہوتے تھے مختلف، کس کو کیا کام کرنا، جیسے اسائنڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو اس وقت سے یہ چلتا آ رہا تھا قصی کے دور سے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو جھنڈا عبد الدار کے ہاتھ میں ہوتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جھنڈا ہونا ایک بہت بڑی آنر بھی ہوتی ہے، اور جھنڈے کا گرنا دشمن کے غالب آنے کی دلیل بھی ہوتی ہے.
फिर बाप दादा से जो दस्तूर चला आ रहा था उसके पेशे नजर कोई भी उनसे झगड़ा नहीं कर सकता था कि ये छोड़े, लेकिन अबू सुफियान ने उनको याद दिलाया कि देखो जंगे बदर में इनका झंडा नजर बिन हारिस को दिया गया था और वो गिरफ्तार हो गया था, तो कुरैश को किन हालात से दोचार होना पड़ा। इस बात को याद दिलाते हुए और इनका गुस्सा भड़काने के लिए कहने लगे अबू सुफियान, ए बनी अब्दुद्दार, बदर के रोज आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था, तो हमें जिन हालात से दोचार होना पड़ा वो आपने देख ही लिया। हकीकत में फौज पर झंडे ही की जानब से जद पड़ती है, जब झंडा गिर पड़ता है तो फौज के कदम उखड़ जाते। बस अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक तौर से संभाल लें या हमारे और झंडे के दरमियान से हट जाएं, हम इसका इंतज़ाम खुद कर लेंगे। ये बात करने का मकसद क्या था अबू सुफियान का? मकसद ये था कि ये लोग जो हैं छोड़ देंगे कि अच्छा जी फिर हम नहीं करते। लेकिन इस बात को सुनकर रिएक्शन उलट हुआ। बनी अब्दुद्दार के जो लोग थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने धमकियां दी और ऐसे लग रहा था कि अबू सुफियान पर वो गुस्से से चल दौड़ेंगे। कहने लगे, क्या हम अपना झंडा तुम्हें दे दें? कल जब टक्कर होगी तो देख लेना हम क्या करते हैं। और वाकई जब जंग हुई तो वो बहुत हिम्मत के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि इनका एक एक शख्स जो था वो मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक्य में भी कुछ बातें अमल की हैं। देखिए कि गज़वे बदर में अगर बनी अब्दुद्दार के कुछ लोग जो थे झंडे का सही हक अदा न कर सके तो बात पूरे कबीले को सुननी पड़ी। यहाँ से हम अपने लिए अमल का नुक्ता निकालेंगे, कभी भी कोई काम करते हुए अपने गिरोह को अपने नाम को ज़ाया ना कीजिए। बस दफ़ा आप गलत काम करेंगी, पूरा गिरोह पूरा इदारा पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बदनाम होगी। किया एक ने था लेकिन पूरी बनी अब्दुद्दार जो थी वो बदनाम हो गई। और दूसरी बात पता चलती है कि हालात एक जैसे नहीं रहते, हमेशा फतह हो तो फिर लोग अल्लाह को कैसे माने। बहरहाल ये सब कुछ करते हुए कुरैश ने एक सियासी चाल चली। हुआ क्या कि जंग के आगाज़ से कुछ पहले कुरैश ने मुसलमानों की सफ़ों में फूट डालने और झगड़ा करने की कोशिश की। अबू सुफियान ने अंसार के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोग हमारे और हमारे चचाजद भाई यानी मोहम्मद के हाथ से बीच में से निकल जाइए तो हम भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें तो आपसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिएगा ज़रा, देखिए कैसे तोड़ते हैं लोग। इसको कहते हैं कि करीब के लोगों को कुछ सब्ज़ बाग दिखाकर अपना बनाना। आज भी लोग ऐसा करते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई इंसान किसी काम के अंदर जुटा हुआ है तो बाज़ लोग सिर्फ उस चीज़ को नुकसान देने के लिए और बाज़ अल्लाह पे भरोसा ना करते हुए कि नहीं यही अच्छा बंदा है बस यही काम करेगा तो होगा, वो दूसरे लोगों के ग्रोहों के लोगों को तोड़ने लगते हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है और उसके पास बहुत कुछ है। ये चीज़ें इंसान की आला ज़र्फ़ी के ऊपर एक चोट पड़ने वाली बात होती है। उसने सोचा था कि ठीक है ये मान जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि वो ईमान जिसके आगे पहाड़ भी ना हिल सके उनके आगे ये चाल कैसे कामयाब हो सकती थी। अंसार ने इस बात के जवाब में खूब सख्त जवाब दिया और कड़वी कुसैली बातें सुना दी। नाकाम हो गए, अल्लाह करे ऐसे सीसा पे लाए हुए मुसलमान हम बन जाएं। ऐसी ठुकी हुई कीलें थी सहाबा कराम कि इस्लाम उनकी वजह से पिवस्त हो चुका था। छोटे छोटे मुफादात और छोटी छोटी झगड़ों और इख्तलाफात पे कटते नहीं थे। आज उम्मत मुस्लिमा का ये कलमिया है और वो क्या कि वो छोटी छोटी बात पे कटने लगते हैं। ज़रा अपनी मर्जी से खिलाफ बात हुई, हम नहीं मानते, हम नहीं करते, हम नहीं देखते, हम नहीं करते, तो कौन ना करे, कुछ नहीं होता। अल्लाह की ज़ात जो है वो अपने कामों को करवा लेती है। बहरहाल लड़ाई का वक्त करीब आया, दोनों कौम फौजें एक दूसरे के करीब आईं। कुरैश ने इस मकसद के लिए एक और कोशिश की और इस बार उन्होंने अबू आमिर फासिक को आलहकार बनाया, मुसलमानों के सामने नमूदार हुआ। इस शख्स का नाम अमर बिन सैफी था, इसको राहिब कहा जाता था, अल्लाह के नबी ने इसका नाम फासिक रखा। ये जाहिलियत में कबीला औस का सरदार था, लेकिन जब इस्लाम की आमद हुई तो इस्लाम इसके गले की फांस बन गया, तो अल्लाह के नबी सल्लम के ख़िलाफ़ खुलकर दुश्मनी पर आ गया। वो मदीना से निकलकर कुरैश के पास पहुंचा और इनको आपके ख़िलाफ़ भड़का भड़का कर जंग पर इमादा किया और यकीन दिलाया कि मेरी कौम के लोग मुझे देखेंगे तो मेरी बात मानकर मेरे साथ हो जाएंगे। चुनाचे ये पहला शख्स था जो मैदान ओहद में लश्करों और अहले मक्का के ग़ुलामों के हमरा मुसलमानों के सामने आया और अपनी कौम को पुकार कर अपना तारुफ कराते हुए कहने लगा, कबीला उसके लोगों, मैं अबू आमिर हूँ। इन लोगों ने कहा, ओ फासिक, अल्लाह तेरी आँख को खुशी नसीब ना करे। ये बददुआइया कलेमा था क्योंकि इस शख्स ने इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। इसका तذکرہ में सूरह तौबा में भी मिलता है, कैसे मस्जिद ज़रार बनाई और वो सारी कहानी एक अलग जगह पे आएगी इंशाल्लाह दोबारा। इसने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, हो मेरी कौम मेरे बाद शर से दो चार हो गई है, देखिए ये सरासर बगावत वाला जुमला और शक वाला। जो ऐसे लोग होते हैं ना खोटे, उनको अपने साथियों पे भी एतबार नहीं होता। कहते नहीं कुछ किया होगा, नहीं तुम किसी से मिल गए हो, नहीं तुमने कुछ और कर लिया होगा, नहीं अब तुम कहीं और मसरूफ़ हो गए होगे, नहीं अब तुमने तो किसी और से कुछ लेना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल यही यहाँ दिख रहा है कि अच्छा जी मेरे बाद अब तुम पे शर आ गया। लेकिन जब फिर लड़ाई शुरू हुई तो इस शख्स ने बड़ी ज़ोर की जंग की और मुसलमानों पर जमकर पत्थर बरसाए। यहाँ देखिए कि मोमिन अल्लाह पे भरोसे के बाद अपने ज़ोरे बाजू पे जंगे जीतता है, लेकिन दुश्मनों और मुनाफिकों और यहूद की ये हमेशा से स्ट्रेटेजी रही कि ये लोग हमेशा सी बीच में रखने डालते हैं, साजिशों के जाल बुनते हैं। इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल ये सब कुछ करने के बाद एक और जो जतन उन्होंने जोड़ा वो क्या था कि जोश और हिम्मत दिलाने के लिए कुरैशी औरतों ने भी कोशिश शुरू कर दी। इनकी क़यादत अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन उतबा कर रही थी। औरतों ने सफ़ों में घूम घूम कर दफ़ पीट पीट कर लोगों को जोश दिलाया, लड़ाई के लिए भड़काया, जानबाजों को गैरत दिलाई, नेजाबाजी और तलवार चलाने, मार धाड़ और तीर गिराने के जज्बात को बड़ा किया। इसी तरह के कुछ उनके अशआर थे। झंडा पकड़े हुए लोगों को मुखातिब करके कहने लगी, देखो बनी अब्ददार, देखो पुश्त के पासदार, खूब करो शमशीर का वार। और कभी अपनी कौम को लड़ाई का जोश दिलाते हुए कहती, इन तुकबिलु नुआनिक, अगर पेश कदमी करोगे तो हम गले से लगाएंगी और कालीन बिछाएंगी, और अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगी और अलग हो जाएंगी। आज हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही नगमे और ऐसी ही बातें बयान की जाती हैं। ठीक है, एक हद तक जोश दिलाने के लिए मुसलमानों को जंग के बाहरना अच्छा है, लेकिन औरतों को इस्तेमाल करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि ये ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें फिर सिर्फ इस्लाम नहीं रहता, दीन नहीं रहता, बल्कि जज्बात कोई दूसरे भी उभर आते हैं। उनकी आवाज़, उनका हुस्न, उनकी खूबसूरती बाज़ दफ़ा दीन की मोहब्बत पे गालिब आ जाती है। जंग शुरू होती है। जब दोनों फरीक सामने आए और करीब आ गए, अब लड़ाई का मरहला शुरू हुआ। सबसे पहला शख्स मुशरिकीन की तरफ से जो इस जंग में काम आया वो झंडा उठाने वाला तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी था। ये कुरैश का बहुत बहादुर किस्म का शख्स सवार समझा जाता था। इसे मुसलमान कबशुल कतीबा यानी लश्कर का मेंढा कहते थे। ऊंट पर सवार हुआ, मुकाबले की दावत दी। इसकी हद से बड़ी हुई शुजात के सबब आम सहाबे कराम मुकाबले से कतरा गए, लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जस्त लगाकर ऊंट पर जा चढ़े। फिर इसे अपनी गिरफ्त में लेकर ज़मीन पर कूदे और तलवार से ज़िबा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लम ने यह वलवला अंगेज़ मंज़र देखा तो ख़ुशी से नारे तकबीर बुलंद किया। मुसलमानों ने भी नारे तकबीर लगाया। फिर आपने हज़रत ज़ुबैर की तारीफ़ की और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। ज़हन में रखिएगा, नबी सल्लम के रिश्तेदार भी थे, फूफीजाद भाई थे। तो यहाँ से आप देखिए कि जिस झंडे को पकड़ने के लिए इतने अबू सुफियान ने मैसेज दिए, पैगाम दिए, तो शुरू में ही झंडा पकड़ा हुआ शख्स आ गया। और अब यहाँ से ज़रा आप जंगों के नक्शे देखिएगा, शुरू कितना खूबसूरत हुआ, मुसलमानों के हक़ में कितना अच्छा था। बीच में थोड़ी भगदड़ हम देखेंगे, लेकिन जिस चीज़ का आगाज़ अच्छा हो और अंजाम अच्छा हो वो बुरी नहीं होती। इधर से जब मुसलमानों को पहली ही कामयाबी मिली, मुशरिकीन जो पहले ही इंतकामी जज्बात से भरे हुए थे, अब तो उनके अंदर और आग लगी। पूरे तौर पे मैदान में खुलकर आए। मुशरिकीन का परचम जो था वो सबसे बुनियादी हदफ था मुसलमानों का कि इसको पकड़ा जाए। जो ही तलहा बिन अबी तलहा कत्ल हुए तो उसके बाद फिर दूसरों ने झंडा पकड़ा, सब मारे गए। सबसे पहले तलहा के भाई उस्मान बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया और ये कहते हुए आगे बढ़ा कि परचम वालों का फ़र्ज़ है कि नेज़ा खून से रंगीन हो जाए या टूट जाए। यानी कमिटमेंट देखिए कि हम झंडा नहीं छोड़ेंगे। इस शख्स पर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हमला किया, इसके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि वो हाथ समेत कंधे को काटती और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक पहुंच गई, यहाँ तक कि उसका फेफड़ा दिखाई देने लगा। और अभी आप देखिएगा कि हज़रत हमज़ा का भी वक्त आने वाला है। लेकिन मैं सोच रही थी ये जुमला बोलते हुए कि हज़रत हमज़ा दुनिया से जाने से पहले कितनी बहादुरी से लड़ गए। शहादत किसको मिलती है जो मरने से पहले अच्छा काम कर रहा हो। अगर मैदान जंग में ये जौहर ना दिखा रहे होते, घर में कहीं होते या कोई फिल्म देख रहे होते, नाउज़ुबिल्ला, या घर में ही बैठे होते सुकून से, कहनी जी मैं नहीं लड़ता, तो उनको ये शहादत मिलती जो बाद में मिली। तो पता क्या चला कि समटाइम नेकी की जाती है जिससे फिर और नेकियों के रास्ते खुलते हैं। और अगर हमें ख्वाहिश है ना कि हमें कोई बहुत बड़ी नेकी मिले, अल्लाह सुब्हान तआला हमें कुछ और बड़े से बड़ा दे, तो फिर उसके लिए हकीकत में बड़े हौसले पैदा कीजिए, बड़े से बड़े मामलात, बड़ी से बड़ी चीज़ें रखिए सामने। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाएगा। वही कहते हैं कि शाह सवार जो होते हैं वही फिर मैदान जंग में जाके कारनामे अंजाम देते हैं। बहरहाल इसके बाद अबू साद बिन अबू तलहा ने झंडा उठाया, इस पर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीर चलाया और वो ठीक इसके गले पर लगा, जिससे इसकी ज़ुबान बाहर निकल आई और वो उसी वक्त मर गया। लेकिन बाद सीरत निगार कहते हैं कि अबू साद ने बाहर निकल कर मुकाबले की दावत दी और हज़रत अली ने आगे बढ़कर मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार का एक वार किया, लेकिन हज़रत अली ने अबू साद को मार दिया। इसके बाद मुसाफे बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया। आप देख रहे हैं कि एक ही ख़ानदान के लोग लगते हैं, लेकिन इस शख्स को भी आसिम बिन साबित बिन अबी अफलोह ने तीर मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद उसके भाई कलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर इस पर ज़ुबैर बिन अवाम टूट पड़े और लड़ भिड़ कर इसका काम तमाम किया। फिर इन दोनों के बाद इनके भाई जुल्लास बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर इसे तलहा बिन उबैदुल्लाह ने निज़ा मार कर ख़त्म किया। और बास कहते हैं कि आसिम बिन साबित बिन अबी अफलोह ने तीर मार के ख़त्म किया। ये थे सब एक घराने के 6 अफराद, सब के सब अबू तलहा अब्दुल्ला बिन उस्मान अब्दुदार के बेटे या पोते थे, जो झंडे की हिफाजत करते हुए मारे गए। सोचिए, जान तो जानी गई लेकिन किस काम आई, किसके दिफा में, फी सबीलिल्लाह या कुफर की हमदर्दियों में। काम एक ही है, नीयतें फ़र्क हो जाती हैं, हमदर्दियाँ फ़र्क हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारी कोशिशों का रुख अपनी तरफ रखे, हम इसको अच्छे तरीके से करें और अल्लाह ताला कुर्बानियों को और तकलीफ़ों को भी खैर के रास्ते में लगवाए, ना कि शर के रास्ते में। यहाँ मुझे कुरान पाक की वायद भी याद आ रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं और सहाबा अल्लाह के नबी के साथियों क्या हुआ, तालमून, अगर तुम दर्द सहते हो, फ़ाइन्ना यालमून, वो भी तो दर्द सहते हैं, यानी चोट उनको भी लगती है, लेकिन देखो तुम्हें इसके बाद अल्लाह से कितनी अच्छी उम्मीदें हैं और उनको अल्लाह से कोई उम्मीद भी नहीं है। इन सब के बाद कबीला अब्दुद्दार के एक और शख्स अरतात बिन शराहबील ने परचम संभाला, लेकिन इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने और बास कहते हैं कि हमज़ा ने कत्ल कर दिया। इसके बाद शुरैह बिन कारिस ने झंडा उठाया, मगर इसे कज़मान ने कत्ल किया। कज़मान मुनाफिक था और इस्लाम की बजाय कबायली हमीयत के जोश में मुसलमानों के हमराह लड़ने आया था। क्या ख्याल है इसको फ़ायदा हुआ होगा, अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस के एक शख्स आता है मैदान जंग में लड़ने के लिए, लेकिन साथ तासुब भी है, कोई अपने ख़ानदान के लिए आ जाता है, कोई नाम के लिए, कोई शोहरत के लिए, तो क्या ये फ़ी सबील अल्लाह? तो आपने फ़रमाया नहीं, फ़ी सबील अल्लाह वही है जो काम अल्लाह के लिए किया जाएगा। इस शख्स ने ये काम अच्छा किया, इसकी नीयत इसके साथ थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला से अमल करने से महफूज रखे कि जो अमल करने के बाद भी कुछ भी ना मिले। इसके बाद अबू जैद अमर बिन अब्द मनाफ ने झंडा उठाया, मगर उसे भी कुज़मान ने मार दिया। फिर शराहबील बिन हाशिम अब्दरी के एक लड़के ने झंडा उठाया, मगर वो भी कुज़मान के हाथों मारा गया। हौसले कितने थे इनके, एक बंदे को मारना तो दूर की बात है, मरता देख लें तो हाथ ठंडे होने लगते हैं, कहाँ ये लोग मार के फिर हौसला रखते थे। इस तरह बनी अब्दुदार के 10 लोग थे जिन्होंने मुशरिकीन का झंडा उठाया और सब के सब मारे गए। इसके बाद इस कबीले का कोई आदमी बाकी ना बचा जो झंडा उठाता, लेकिन इस मौके पर इनके एक हबशी गुलाम ने जिसका नाम सुआब था लपक कर झंडा उठाया और ऐसी बहादुरी और पामर्दी से लड़ा कि अपने से पहले झंडा उठाने वाले अपने आकाओं से बाजी ले गया। यहाँ भी आप देखिए कि जिसको जो काम दिया था वो वही कर रहा है, दूसरे नहीं आके बीच में हिस्सा डाल रहे। इससे भी अमल की बात निकलती है कि जिसको जो काम दिया जाए वो वही करे। एक मारा गया, दूसरा मारा गया, कोई बात नहीं, उसी खानदान का या उसी की कबीले का एक दूसरा शख्स तो आ गया गुलामी की सूरत में, लेकिन वो नहीं आया, दूसरा कोई बीच में आपको आता हुआ नहीं दिखा। ये गुलाम मुसलसल लड़ता रहा, यहाँ तक कि इसके दोनों हाथ यके बदीगरे काट दिए गए, लेकिन इसके बाद भी इसने झंडा गिरने ना दिया। क्या जज्बे होते हैं, आप सोचिए कि अगर हमदर्दियाँ इस्लाम के साथ हैं तो खुशकिस्मती है, अगर कुफर के साथ हो गई तो फिर भी तो यही कुछ कर रहे होते। आप देखिए जो दुनिया में पीछे लगे होते हैं शैतानी कामों में, क्या वो मेहनत नहीं करते, उनकी जान को खतरे नहीं। बाज़ लोग अपनी जान पे लेके पिक्चर्स के सीन पिक्चराइज करते हैं, लेकिन अगर एक बंदे को अल्लाह के रास्ते में थोड़ी मुश्किल आ भी जाए तो क्या हुआ? मुबारक है ये काम जो अल्लाह के रास्ते के हों, और मुबारक है वो मुश्किलात जो अल्लाह के रास्ते में आए। इसने हाथ कटने के बावजूद झंडा न गिरने दिया, बल्कि घुटने के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से खड़े किए रखा, यहाँ तक से कि जान से मार दिया गया। उस वक्त भी वो ये कह रहा था कि या अल्लाह, अब तो मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। नोट कीजिए, अल्लाह का नाम वो भी लेते थे जैसे आज हम भी रस्मन कलामन लेते हैं नाम अल्लाह का। अल्लाह की बात कहाँ से आ गई, तो उसकी बात क्या है कि अल्लाह को तो मानते थे, नबी को नहीं मानते। ये बहुत बड़ा मसला है कि ये लोग अल्लाह की बात करने के बावजूद भी अल्लाह के नाफरमान बन के दुनिया से गए, और कमिटमेंट तो बाहर आला ही थी। आज हम नॉन मुस्लिम्स को अच्छे तरीके से अपने मकसद से जुड़े हुए और काम करते देखते हैं तो इम्प्रेस होते हैं। तो यहाँ भी देखिएगा कि मौजूद वहाँ भी थे ऐसे लोग जो कुफर के साथ अपनी हमदर्दियाँ रखते थे, और कोई भी काम कमिटमेंट के बगैर नहीं होता। कहीं भी फतह होगी ना, चाहे मुस्लिम को हो या गैर मुस्लिम को, पीछे उसकी काम करने वाले कमिटेड लोग होंगे। ये गुलाम मरा, इसके बाद झंडा ज़मीन पर गिरा और अब इसे कोई उठाने वाला ना था, वो गिरा ही रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुसलमानों को कितनी फतह थी, अल्लाह के वादे पूरे हो रहे थे। अभी तक कुछ हमें नहीं पता आगे क्या होना है। क्या पता चला कि जब तक लोग अल्लाह के हुक्मों पे रहते हैं, जब तक लोग रसूल की इताअत करते हैं, फतह उनका मुकद्दर बनती है। टूटी तलवारों से कुछ नहीं होता, गिनती में कम या ज़्यादा होना कुछ नहीं देता। असल बात यह है कि एक इंसान जो काम कर रहा है उसको कर किस तरीके से रहा। ये तो जंग का वो मंजर था जो झंडे के इर्द गिर्द हो रहा था। मैदान के बकिया हिस्सों में शदीद जंग जारी थी। मुसलमानों की सफ़ों पर ईमान की रूह छाई हुई थी, इसलिए वो शिर्क और कुफर के लश्कर पर इस सैलाब की तरह टूटे पड़ रहे थे जिसके सामने कोई बन ठहर नहीं सकता। मुसलमान इस मौके पर अमित अमित कह रहे थे, और यही इस जंग में इनका शुआर था। आपको था कि हर जंग में कुछ ना कुछ कोडवर्ड्स होते हैं ना, इसी तरह के कोडवर्ड थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी को जोश दिलाया जाए कि आज तो मर के जाएंगे, मौत तक लड़ेंगे, कोई बात नहीं, तुम भी मरो, मैं भी मरता हूँ। यानी बिल्कुल ये सोच के आए हैं कि आज यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, ये भी उनकी कमिटमेंट है। इतने में अबू दुजाना अपनी सुरख पट्टी बांध के नबी सल्लम की तलवार थामे और इसके हक़ को अदा करने का पक्का इरादा करते हुए आगे आते हैं और लड़ते हुए दूर चले गए। याद रखिए, उस दौर में ऐसे नहीं होता था कि सब घुसमस हो गए, बड़ा जाब्ता था, बड़ी मुहज़ब जंगें थी उस दौर की। एक तरफ कुफार है, एक तरफ मुसलमान है, थोड़ा थोड़ा कोई एक दो आगे पीछे जाता था, जैसे पानी की लहरों के किनारों पर लड़ते जाएं। लेकिन अबू दुजाना तो दूर चले गए, दुश्मनों के अंदर चले गए, और जितना कोई आगे जाएगा जाहिर है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। इसी तरह वो गए, जिस मुशरिक से मिलते उसको साफ कर देते, सफ़ों की सफ़ें उलट दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह से तलवार मांगी तो आपने मुझे ना दी, तो मेरे दिल पर इसका असर हुआ, और मैंने अपने जी में सोचा भी कि हाँ, मैं आपकी फूफी सफ़िया का बेटा हूँ, कुरैशी हूँ। मैंने आपके पास जाकर अबू दुजाना से पहले तलवार मांगी, लेकिन आपने मुझे ना दी और इनको दे दी, इसलिए वल्लाह ही मैं देखूंगा कि वो इससे क्या काम करते हैं। बस मैं उनके पीछे लग गया, और उन्होंने ये किया, पहले अपनी सुर्ख पट्टी निकाली और सर पर बांधी। ये किस्म की निशानी थी ना कि अब तो मरते दम तक जो भी हो अब तो काम करके आएंगे। इस पर अंसार ने कहा, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी निकाल ली। फिर वो ये कहते हुए मैदान की तरफ भागे, मैंने इस नखलिस्तान के दामन में अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया है कि कभी सफ़ों के पीछे न रहूँगा, बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की तलवार चलाऊँगा। इसके बाद उनको जो मिलता वो उसको कत्ल कर देते। इधर मुशरिकीन में एक शख्स था जो हमारे किसी भी जख्मी को पा जाता इसका खात्मा कर देता कि चलो कमज़ोरों को पकड़ के उनको मार दें, इसके बाद उसको कत्ल कर देता। दोनों करीब हो रहे थे, कहते कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि दोनों की टक्कर हो जाए, और वाकईतन दोनों की टक्कर हो गई और दोनों ने एक दूसरे पे हाथ रखा, और पहले मुशरिक ने अबू दुजाना पर तलवार चलाई, लेकिन अबू दुजाना ने यह हमला ढाल पर रोक कर मुशरिक की तलवार ढाल में घुस गई। इसके बाद अबू दुजाना ने तलवार चलाई और मुशरिक को वहीं ख़त्म कर दिया। अल्लाह अकबर। इसके बाद अबू दुजाना सफ़ों की सफ़ें पलटते हुए आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि कुरैशी औरतों की कमांड तक पहुँच चुके थे। इनको मालूम न था कि ये औरत है, उनका बयान है कि मैंने एक इंसान को देखा, वो लोगों को बड़े ज़ोरों शोर से जोश व वलवला दिला रहा है, इसलिए मैंने इसको निशाने पर ले लिया। लेकिन जब तलवार से हमला करना चाहा, इसने हाय पुकार मचाई और पता चला कि वो तो औरत है। मैंने रसूलुल्लाह की तलवार को बट्टा न लगने दिया कि इससे किसी औरत को मारूं। ये है जब्त और तहम्मुल। ऐसे वक्त में भी जज्बात पे काबू था, नहीं मारा। और आपको पता ये औरत कौन थी? हिंद बिनत उतबा। अल्लाह अकबर, इस्लाम का कितना ग्रज था कि मैदान जंग में आके मर्दों की सफ़ों में लड़ रही है। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने वो दुजाना को देखा कि उन्होंने हिंद बिन उतबा के सर के बीचों बीच तलवार बुलंद की और फिर हटा ली। मैंने सोचा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने जिसको बचाना होता है बचा लेता है। और याद रखिए, जो लोग जंगों में बचे थे ना, वो बाद में फिर मुसलमान हो गए थे। हज़रत हमज़ा भी खूब बहादुरी दिखा रहे थे, बिफरे हुए शेर की तरह जंग लड़ रहे थे। इस तरह मार धाड़ के साथ दुश्मन के लश्कर की तरफ जा रहे थे कि जो बड़े बड़ा बहादुर उनके सामने आता, वो उनको देख कर इधर हो जाता। ऐसे लग रहा था कि जैसे तेज़ आंधी में पत्ते उड़ रहे हों, इस तरह लोग उनको देख कर इधर उधर हो रहे थे। उन्होंने मुशरिकीन के झंडे उठाने वालों की तबाही में बहुत नुमायाँ रोल अदा किया। और ख़ास तौर पर जो लोग उनके मारूफ थे कि बड़े बहादुर हैं, जानबाज हैं, उनका भी हाल ख़राब किया। और इसी में उनकी फिर शहादत भी हो गई। लेकिन बहादुरों की तरह रू दर रू लड़कर शहीद नहीं किया गया, बल्कि बुज़दिलों की तरह छुप छुपा कर बेखबरी के आलम में मारा गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ से मुसलमानों के लिए अब एक नया बाब खुलता है। बिल्कुल फतह के असरात हैं। ऐसे ही लग रहा है कि एक बदर और हो गई, एक दफ़ा और अल्लाह की मदद आ गई। लेकिन इतने में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो आज हम में से हर एक को सुनने से ज़्यादा अपने दिल पे लिखने की ज़रूरत है। क्या क्या मुसलमानों ने उस दिन बहादुरी के जौहर दिखाए। हज़रत हमज़ा के कातिल वहशी बिन हर्ब थे। खुद अपनी ज़ुबान से हज़रत हमज़ा की शहादत का वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं जुबैर बिन मुतैम का ग़ुलाम था और उनका चचा तुएमा बिन अदी जंगे बदर में मारा गया। जब कुरैश जंगे उहद पर रवाना हुए तो जुबैर बिन मुतैम ने मुझसे कहा, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को मेरे चचा के बदले कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो। देखिए बदला कैसे लेते थे कि उस जंग में मेरे चचा मारे गए तो मैं अब नबी सल्लम के चचा को मारूंगा। ये भी एक किस्म का अपनी ज़ात के लिए लड़ना है ना। आप देखेंगे कि इस्लाम के लिए लड़ना और कुफर के लिए लड़ना, यही बुनियादी फ़र्क है उसमें, कि इसमें इंसान अपनी ज़ात में खोया रहता है और उसमें मकसद प्यारा होता है। वैसे कहते हैं कि ये पेशकश बड़ी खूबसूरत थी कि भाई आज़ाद हो जाऊँगा लो एक बंदे को मार के। कहते हैं ठीक है, मैं भी साथ चला गया। मैं हबशी आदमी था और हबशियों की तरह नेज़ा फेंकने में माहिर था। निशाना मेरा कम ही चूकता था, लंबे चौड़े कद के होते हैं, जहाँ निशाना मारा चला भी गया। जब लोगों में जंग छिड़ गई तो मैं निकलकर हमज़ा को देखने लगा। मेरी निगाहें इसकी तलाश में थी। बिलाखिर मैंने इन्हें लोगों के हजूम में देख लिया। कहते हैं कि जैसे खाकी रंग का ऊंट होता है ना, इस तरह वो लग रहे थे, यानी खूब ऊंचे लंबे। लोगों को इधर उधर हम बरहम करते जा रहे हैं और उनके सामने कोई चीज़ नहीं टिक पा रही। कहते वल्ला ही अभी मैं उनके कत्ल के इरादे से तैयार ही हो रहा था और एक दरख्त जब पत्थर की ओट में छुप कर इन्हें करीब आने का मौका देना चाहता था कि इतने में सुबा बिन अब्दुल उज्जा मुझसे आगे बढ़कर उनके पास जा पहुंचा। हमज़ा ने इसे ललकारते हुए कहा, ओ शर्मगाह की चमड़ी काटने वाली के बेटे, ये ले। और साथ ही ज़ोर की तलवार मारी, गोया कि इसका सर था ही नहीं। वैशी कहते इसके साथ ही मैंने अपना नेज़ा ठीक किया और जब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो इनकी तरफ उछाल दिया। नेज़ा नाफ के नीचे लगा और दोनों पाँव के बीच से पार हो गया। उन्होंने मेरी तरफ उठना चाहा लेकिन मकलूब हो गए। मैंने इनको इसी हाल में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो फौत हो गए। इसके बाद मैंने इनके पास जाकर अपना नेज़ा निकाल लिया और लश्कर में वापस जाकर बैठ गया। मेरा काम ख़त्म हो चुका था, मुझे इनके सिवा किसी और से तो कोई सरोकार नहीं थी। मैंने सिर्फ इन्हीं को कत्ल करना था इसलिए कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। इसलिए जब मैं मक्का वापस आया तो मुझे आज़ादी मिल गई। यहाँ से अब देखिए कि अल्लाह के नबी का दिल कैसे तोड़ा, लेकिन सिर्फ आज़ादी की कीमत। लेकिन आप देखेंगे आगे जाके कि वहशी आज़ाद नहीं हुए, असल में यहाँ कैद होते हैं। और कैसे अपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में कफ़ारे के तौर पे पूरा करते हैं। आज इनसे जो ज़्यादती, उसके बाद अल्लाह ने इनको इस्लाम भी दे दिया था। और अल्लाह के नबी किसी से बदला नहीं लेते थे, हालांकि हज़रत हमज़ा की शहादत का अल्लाह के नबी को इतना रंज था कि आप उस औरत को सामने नहीं आने की बात करते थे कि जिसने हजरत हमजा का कलेजा छुपाया था। लेकिन वैशी ने आखिरी जिंदगी में ऐसा काम किया कि उनका ये कफारा बन गया। इंसान सच्चा हो ना तो अल्लाह उसकी कमियां बेशियां माफ़ कर ही देता है। बहुत बड़ा गुनाह हो फिर भी फिक्र ना करें, कोई बहुत बड़ी नेकी करने की फिक्र कर ले। हजरत हमजा की शहादत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी, नाकाबिले तलाफी नुकसान था। इसके बावजूद मुसलमान जीत रहे थे। अबू बकर, उमर, अली, ज़ुबैर, मुसअब, तलहा बिन उबैदुल्ला, अब्दुल्ला बिन जहश, साद बिन माज, साद बिन उबादा, साद बिन रबी, नसर बिन अनस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन ऐसी बहादुरी से लड़े कि मुशरिकों के छक्के छूट गए, हौसले टूट गए, इनकी कुव्वत बाजू जवाब दे गई। दिल चाहता ना कि खुली आंखों से ज़रा ये मंजर तो देखें। क्या दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। क्या ये बात थी इन लोगों के अंदर, इतनी बड़ी बातें। अल्लाह ताला कैसे इन लोगों को अपने कामों के लिए चुनता था। एक और ना यकीन किया जाने वाला वाक्या भी है गज़वे उहद के ज़िमन में, और वो क्या है कि औरत की आगोश से तलवार की धार पर। इन्हीं जान फरोश शाहबाजों में एक और बुज़ुर्ग थे, हज़रत खनजला। एक निराली शान से मैदान जंग में तशरीफ़ लाए। हैरत होगी आपको कि ये उसी अबू आमिर राहिब के बेटे हैं जिसे बाद में फासिक के नाम से शोहरत मिली। इनकी भी नई नई शादी हुई थी, जंग का ऐलान हुआ तो अपनी बीवी के पास थे, आवाज़ सुनते ही निकले और जिहाद के लिए रवाना दवा हुए। जब मुशरिकों के साथ मामला पूरा हुआ, इनकी सफ़ें चीरते हुए गए और दुश्मनों के सिपा सलार अबू सुफियान तक पहुँचे। करीब था कि उनका काम तमाम करते, लेकिन अल्लाह ने खुद इनके लिए शहादत मुकद्दर रखी। चुनाचे उन्होंने जूँ ही अबू सुफियान को निशाने पर लेकर तलवार बुलंद की, शद्दाद बिन औस ने देख लिया और झट हमला किया, जिससे खुद हजरत हंजला शहीद हो गए। कोई आज के दौर में इसका तसव्वुर भी कर सकता है? आज तो बीवी तो छोड़ दीजिए, रक्सो सुरूद की महफिलें, पार्टियां, दावतें, वीकेंड नाइट्स, बारबेक्यू डिनर, ये कुछ हमें नमाजों से रोक लेते हैं। कितनों की फजर की नमाज चली जाती है वीकेंड पे कि रात देर से सोए। क्या जज्बे थे इन लोगों के कि मैदान जंग में कूद पड़ते थे। इस तरह से ऐसे वक्तों में इनको कोई खौफ नहीं आता था कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाद में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं की बीवी आके अल्लाह के नबी को क्या खबरें देती है। लेकिन हम सिर्फ फिक्र करें तो अपनी करें, हमारा क्या बनेगा? हमारे अंदर कितने सच्चे दावे हैं और कितने झूठे हैं, किस तरीके से हम ऐसी कोशिशें कर सकते हैं? आज वो माएँ नहीं क्या कि जो अपने बेटों को इस तरह की तरबियत दें, इस तरह के हालात के जिसमें हकीकत में मकसद इतना प्यारा हो जाए कि इंसान अपने नफ्स पे काबू पाते हुए अपनी हर चीज़ को पीछे डालकर अल्लाह के काम पे आ जाए। देखिए, आप कहेंगे कि हाय कितने खुशकिस्मत थे, मैदाने जंग में इस तरह से आगे थे। तो याद रखिए कि जब तक हमारी नमाजों में लिल्लाहियत नहीं आएगी, हमारी जंगों में भी लिल्लाहियत नहीं आएगी। आज जो नमाज के लिए नहीं उठ सकते ना, वो कल मैदान जंग में जाने के लिए भी नहीं उठ सकते। दुआ कीजिए कि आज उम्मते मुस्लिमा में वो रूह पैदा हो जाए कि जो बंदे को बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार कर दें, अल्लाह के दीन के तकाजे उसके ज़ाती तकाजों से उसको बेनियाज कर दें, अल्लाह के दीन की फतह उसके लिए अपनी ज़ाती फतूहात, बच्चों की शादियां, घर बनाना, शादी ये वो इससे बेनियाज कर दें। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में कुछ मज़ीद वाक़यात देखेंगे कि किस तरह मुसलमानों ने ग़ज़वे उहद में हिम्मत दिखाई और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।